आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली लखनऊ समेत देश भर के 47 स्थानों पर 51,000 से अधिक नवनियुक्तों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंतनगर आवासीय योजना के दूसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से हुई शुरू। 332 भूखंडों के लिए 10 अगस्त तक किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन। सावन माह के पहले दिन प्रदेश भर के शिवालयों में उमड़े भक्त। आज से शुरू हुई पवित्र कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा और यातायात के किए गए खास प्रबंध। मुख्य कांवड़ मार्गों की हो रही रियल टाइम मॉनिटरिंग। और राज्य में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 जुलाई तक वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। वे इस अवसर पर नियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल होंगे। नई भर्ती के लिए देश भर से चुने गए लोग गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा डाक विभाग और अन्य विभागों और मंत्रालयों में तैनात किए जाएंगे। देश भर में रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंतनगर आवासीय योजना के दूसरे चरण में 332 भूखंडों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के तहत 10 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। भूखंडों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। योजना के पहले चरण में अप्रैल मई में 334 भूखंडों के लिए आवेदन मंगाए गए थे। भगवान शंकर को प्रिय पवित्र श्रावण माह की आज से शुरुआत हो गई। प्रदेश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं और भक्तों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। सावन माह के पहले दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में रुद्राभिषेक और हवन किया। उन्होंने भगवान शंकर से प्रदेश के नागरिकों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या में सुबह से ही भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। लखीमपुर जनपद में छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। यहां प्रशासन ने भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में सावन माह के पहले दिन का प्रारंभ भगवान विश्वनाथ की मंगला आरती से किया गया। मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं।
श्री काशी विश्वनाथ धाम में जर्मन हैंगर की एंड टू एंड व्यवस्था, क्यू मैनेजमेंट की व्यवस्था, सभी तरह के प्रोटोकॉल स्थगित कर सभी भक्तों को सुलभ दर्शन उपलब्ध कराने की सुरक्षित व्यवस्था के सारे प्रबंध किए गए हैं। गुड़ एवं पानी का वितरण किया जा रहा है। ORS घोल एवं ग्लूकोज का वितरण किया जा रहा है। 5 जगह पर हेल्थ डेस्क लगाई गई है। इसके अलावा हमारा आरोग्य केंद्र भी लगातार परिचालन उसका किया जा रहा है। हमारी एक एलएस एम्बुलेंस और एक नॉर्मल एम्बुलेंस, दो एम्बुलेंस की सेवा भी उपलब्ध है।
सावन माह के साथ ही पवित्र कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई। सरकार ने कांवड़ियों के लिए जगह जगह रूट डायवर्जन किया है और खास सुविधाओं का इंतजाम किया है। विंध्याचल क्षेत्र के मंडलायुक्त बाल कृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज से वाराणसी के बीच नेशनल हाईवे 19 पर एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कांवड़ियों को कांवड़िया शिविर, मेडिकल जैसी कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।
जगह जगह शिविर लगाए जाएंगे, उनके सर्विस की व्यवस्था होगी, उनके लिए पानी पीने के लिए शिविरों में हम लोग व्यवस्था रखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम जगह जगह जो हमारे पास रहेगी, हम लोगों ने इसकी आकस्मिकता को लेकर के तैयारी कर ली है, इससे कि कहीं कोई असुविधा ना हो और श्रद्धालु अपना जिस उद्देश्य को लेकर के आ रहे हैं वो उसको पूरा करें और शंकर जी का जल चढ़ाएं, जलाभिषेक करें और अपने घर को अच्छे तरीके से चलाएं।
वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सावन माह के पहले दिन के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई। गाजियाबाद में करीब 10,000 कांवड़ मित्र बनाए गए हैं। मेरठ के पुलिस अधीक्षक नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि कांवड़ मार्गों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है।
जिलों में करीब 20 अधिक ड्रोन है जिससे हम लोग निगरानी कर रहे हैं। इस साथ ही साथ 10 पॉइंट्स हमने चिन्हित किए जो सेंसिटिव लोकेशन है जहाँ पे हम लोग लगातार ड्रोन से निगरानी रखेंगे, जैसे RRTS परतापुर में है, बेगमपुल, हापुड़ अड्डे और ऐसे और भी अन्य जगह हैं जहाँ पे हम लोग लगातार निगरानी रखेंगे। साथ ही साथ जो इसके विजुअल्स आएंगे उसको हम लोग एनालिसिस करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, और भी अन्य टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सावन माह में कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए डीजीपी मुख्यालय में मॉडर्न कंट्रोल रूम बनाया गया है। मुख्य कांवड़ मार्गों और प्रमुख स्थानों पर 29,454 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही 395 हाईटेक ड्रोन की मदद से डीजीपी मुख्यालय से सीधे मॉनिटरिंग की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सावन माह में श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील वर्मा ने आज अयोध्या में सावन मेले की तैयारियों व ट्रेनों के संचालन को लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक की। श्री वर्मा ने बताया कि ट्रेनों के सुचारू रूप से संचालन को लेकर बैठक में चर्चा हुई।
आगे जो अयोध्या में विचार में आने वाले फंक्शंस हैं जिसमें भीड़ के आने की संभावना रहती है, तो उसके सिलसिले में भी हमने डिस्कशन किया है कि उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, कि ये तीर्थ क्षेत्र है और यहाँ पे समय समय पे फंक्शन होते रहते हैं और भीड़ के आने का उसी हिसाब से प्रोग्राम रहता है। तो हम लोग उसकी एक तरीके से प्रिपरेटरी बैठक हमने की है ताकि इन चीजों को हम सूटेबली हैंडल कर सकें और ट्रेनों का परिचालन भी स्मूथ वे में हो सके।
लखनऊ के रहने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य क्रू सदस्यों की वापसी यात्रा 14 जुलाई से शुरू होगी। इस बात की पुष्टि अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने की है। शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने कहा कि वो लोग शुभांशु शुक्ला का खुले दिल, गर्मजोशी और बैंड बाजे के साथ स्वागत करेंगे।
बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि कितने जल्दी वो पल आए कि बच्चा हमारे वापस आए और हम लोग मिले उससे जाकर। जैसे मिशन अच्छे से चला गया तो वैसे ही वापस भी आए, यही प्रार्थना भगवान से करते हैं।
भारतीय सेना की मध्य कमान ने लखनऊ में स्वचालित हिमस्खलन पीड़ित पहचान प्रणाली के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता ने कहा कि IIT कानपुर के साथ ये सहयोग दुर्गम ऊंचाई वाले और हिमाच्छादित क्षेत्रों में हिमस्खलन पीड़ितों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए एक उन्नत तंत्र प्रदान करने के लिए स्वदेशी तकनीक के विकास और उपयोग में एक मील का पत्थर है। प्रदेश में आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ के जनगणना कार्य निदेशालय में जनसांख्यिकी एवं नागरिक पंजीकरण प्रणाली विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक जनगणना शीतल वर्मा ने कहा कि 2027 की जनगणना के लिए केंद्र से अधिसूचना जारी हो चुकी है, जो मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल माध्यम से की जाएगी। वहीं अमरोहा में विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल है। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ जगहों पर भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 15 जुलाई तक के लिए गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली लखनऊ समेत देश भर के 47 स्थानों पर 51,000 से अधिक नवनियुक्तों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंत नगर आवासीय योजना के दूसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से हुई शुरू। 332 भूखंडों के लिए 10 अगस्त तक किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन। सावन माह के पहले दिन प्रदेश भर के शिवालयों में उमड़े भक्त। आज से शुरू हुई पवित्र कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा और यातायात के किए गए खास प्रबंध। मुख्य कांवड़ मार्गों की हो रही रियल टाइम मॉनिटरिंग। और राज्य में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 जुलाई तक वर्षा का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।